फिर आगे बड़ी तवील आयत है 106 से 108 में, वसीयत पर गवाही कैसे दी जाए। यानी हमारा दीन कितना खूबसूरत है, ज़िंदगी भर की भी गाइडलाइन है, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबता हयात है। कोई शख्स फौत हो रहा है, यानी ये आयत ख़ास तौर पे एक वाक़े से रेलेवेंट है, परदेस है, दियारे गैर है, गैर मुस्लिम मुल्क में कोई गया हुआ है सफ़र में या रहता ही हुआ है, और उसको एकदम मौत की कैफियत है, यानी हार्ट अटैक हो रहा है, एकदम उसका ब्रेन हेमरेज हो रहा है। अब उसके पास कुछ चीज़ें हैं, क्या करें, इर्द गिर्द जो लोग हैं वो सारे नॉन मुस्लिम हैं, तो ये एक पूरा प्रोसेस है। मैं जब भी इसको पढ़ती हूँ तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तूने हमें उस दीन में डाला कि जो अचानक मौत के भी अहकामात तुझे हमें सिखाता है। वो अपनी चीज़ें किसी को देगा, फिर उनको वसीयत करेगा कि जाओ पीछे बैक हो मदीना में जाओ और वहाँ जाकर मेरी चीज़ें दो। और ऐसा हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और जो लोग चीज़ें लेकर गए थे ना, तो उन्होंने उसमें से एक प्याला चोरी कर दिया, और उस शख्स ने अक्लमंदी क्या की थी कि उसने लिस्ट बना के सामान की रखी हुई थी, जब लिस्ट चेक की उसमें से एक चीज़ कम थी, फिर उस पे जाकर मस्जिद में कस्में दिलाई गई। ये सारा एक वाक़ है, और आप नोट करेंगे मुझे इस आयत 108 को देखकर हमेशा आयत दैन याद आती है। आपको भी याद होगी तीसरे पारे में हमने सूरत बकरा के तकमील से पहले वो आयत पढ़ी। यानी कुरान पाक की तवील आयत, नंबर एक मनी मैटर से मुतल्लिक है, रुपए पैसे से मुतल्लिक, और दूसरी इंसानी मामलात की हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इस्लाम का मिजाज क्या है। हम कुरान पढ़ के इंसान दोस्त नहीं रहते, हम अल्लाह के आगे नमाजें पढ़ते हुए तो और से और नमाजें, तरावी, तहज्जुद और न जाने क्या कुछ करते हैं, जो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन इंसानों के साथ आप कैसे हैं, लोगों के साथ, आपके साथ रहने वाले आपके बारे में क्या गवाही देते हैं, आप लोगों के माल को ज़ाया तो नहीं करते, आप उनके लिए कोई तकलीफ़ का सबब तो नहीं। इस्लाम ये चाहता है कि मुसलमान कौन हो कि जिसके हाथ और उसकी ज़ुबान से दूसरे महफूज हो जाएं। फिर इसके बाद आयत नंबर 109 में रसूलों की अल्लाह ताला के यहाँ हजूरी का जिक्र है। ये वो आयतें हैं जो अल्लाह के नबी सल्लम को बहुत उदास कर देती थी। यौम यजमउल्लाहु रसूल फयकूलु माज़ा उजिबतुम कालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। असल में अब यहाँ से सूरत मायदा का एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसमें पता ये चलेगा कि क्यामत के दिन अम्बिया कराम से सवाल जवाब होगा उनकी उम्मतों के बारे में, और हर नबी अपनी ज़िंदगी में इस बारे में परेशान था कि जब मेरे से हिसाब होगा तो मैं क्या करूँगा। आप और मैं बस इस वक्त ये सोच लें कि अगर अम्बिया कराम से हिसाब होना है तो क्या हमसे नहीं होना, हमसे भी होना है और उनसे भी होना है। फिर आयत 110 में हज़रत ईसा पर अल्लाह ताला के एहसानात का तذکرہ है। हम जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश अनयूजुअल वे पे हुई थी, फिर अल्लाह ताला ने उनको मोजज़ात दिए थे, मुर्दों को ज़िंदा करना और बाकी चीज़ें जो हम सूरह आले इमरान में पढ़ चुके हैं तीसरे पारे में। इस आयत में अल्लाह ताला ने उनका तذکرہ करके एक ख़ास एहसान आयत 111 में बता दिया, और वो क्या था, वइज़ौहैतु इलल हवारियीना अनामिनु बी व बि रसूली कालू आमन्ना वशहद बि अन्ना मुस्लिमून। हवारियों का जिक्र है। नबी सल्लम के साथियों को सहाबी कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथियों को हवारी कहते थे। हौर से हूर का लफ्ज़ में ले, सफ़ेद दिल वाले लोग, कुछ कहते हैं ये धोबी थे, कुछ कहते हैं साफ दिल के लोग थे, लेकिन अगर आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट की खातिर आयत 111 के आखिरी लफ्ज़ को देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ी बात जो मैंने कल के बारे में भी कही थी, हज़रत ईसा के सामने जो आपके हवारी मौजूद थे उन्होंने अपने बारे में क्या कहा, बी अन्नाना मुस्लिमून। ये तो नहीं कहा कि बी अन्नाना नसारा, क्रिश्चियन, समझ, ईसाई। तो क्या पता चला कि नबी के दौर के जो लोग थे वो खुद को मुसलमान कहते थे, जैसे अबू बकर सिद्दीक से लेके हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हो तक, जो आखिरी सहाबी थे जिन पे दौरे सहाबियत पूरा हुआ, सब ने अपने आप को जिंदगी भर में मुस्लिम कहा। आज हम मुस्लिम के साथ कुछ और लफ्ज कहते हैं, आज के लोग हजरत ईसा को मानने वाले खुद को मुसलमान तो नहीं कहते, वो तो ईसाई, क्रिश्चियन, नसारा कहते हैं, तो ये फिरकावारियत के नाम है। फिर इसके बाद सूरत कैन की तरफ बढ़ते हैं तो एक फरमाइशी मोजज़े का मुतालबा है, और ख़ास तौर में फिर इसमें सूरत का नाम मायदा भी आएगा। आयत 112 से 113 में इस कालल हवारीयूना या ईसा इब्न मरियम, हज़रत ईसा को पुकार रहे हैं, नाम ले रहे हैं, क्या इब्ने मरियम यानी ईसा, क्या आपका रब ये कर सकता है, या नोट कीजिए हल यस्तती और रब्बू का, आज के क्रिश्चियंस क्या कहते हैं, जीसस गॉड। हज़रत ईसा के दौर के हवारी जो उनके सहाबी कह लीजिए, वो क्या कह रहे हैं क्या आपका रब ये कर सकता है? कुरान का सिर्फ तर्जमा आप दिखा दीजिए क्रिश्चियंस को तो कितनी सलाह हो। क्या आपका रब ये कर सकता है कि हम पर आसमान से खून उतार दे? काल इत्तकुल्ला, हजरत ईसा ने कहा अल्लाह से डर जाओ अगर तुम मोमिन हो, क्योंकि हजरत ईसा को पता था कि जब अल्लाह से कुछ मांग लिया जाए और उसका फिर हक अदा न किया जाए तो पकड़ बहुत होती है। तो ये वो आयतें हैं जिसकी वजह से इस सूरत का नाम सूरत मायदा है। अगली आयतें 114 से 115 में मोजे के लिए दुआ और अल्लाह ताला का जवाब। जब कौम ने कहा नहीं नहीं प्लीज आप हमारे लिए रिक्वेस्ट करें, देखिए ना वो अहले किताब हैं तो यहूद थे, उनके लिए भी तो मनसलवा उतरा था, तो जरा अल्लाह से हमारे लिए कह दें। तो फिर हजरत ईसा ने ये दुआ कर दी थी कि रब्बना अनजिल अलैना। आप इस दुआ की खूबी नोट करना चाहें तो कर लें, इसमें लफ्ज़ अल्लाहुम्मा भी है और रब्बना भी है। आमतौर पे कुरान पाक की दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं। अक्सर आपने चहल रब्बना, 40 रब्बना की बुक्स भी देखी होंगी ना, और अल्लाहुम्मा की दुआ अमूमन मसनून दुआ में आती है जो अल्लाह के नबी से आती है। ये वाहिद दुआ है जिसमें अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस्समा, यानी कि अल्लाह हमारे लिए आसमान से मायदा उतार दे ताकि ये हमारे अगले पिछलों के लिए ईद हो, तेरी निशानी हो और हम इसमें से खाएं, और तू बेहतरीन है। अल्लाह ने कहा ठीक है, قال الله اني منزلها عليكم, ठीक है मैं तुम पे नाजिल करने वाला हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, फमें यकफुर बादु मिनकुम, तुम में से किसी ने इसके बाद भी इनकार किया, कुफर किया यानी नाशुक्री की, तो फाइनली उअज़्ज़िबुहु अज़ाबन, मैं तुम्हें ऐसा अज़ाब दूंगा कि ला उअज़्ज़िबुहु अहदा मिनल आलमीन, कि किसी को भी ना दिया होगा। बस अभी तक ये कहानी क्लोज होती है। क्या ये मायदा उतरा था कि नहीं, ये सवाल उलमा में भी बहुत रहा और आम में भी रहा। मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको मुझे इससे क्या फायदा होगा? लोग कहते हैं हाय हम पे क्यों नहीं उतरता, तो क्या आप पे नहीं उतरता? ये इफ्तारी के वक्त पे जो ढेर खानों का होता है, जो सैरियों में टेबल पे कुछ रखने की जगह नहीं होती, अल्लाह ने आज हमारे लिए भी कौन रखे हुए हैं। असल बात है कि हम नाकदरियों की वजह से, नाशुक्रियों की वजह से उसका हक अदा नहीं करते। और फिर इसके बाद सूरत के बिल्कुल एंड की तरफ आयत 116 से 118 में ईसाइयों के शिर्क से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ऐलाने बरात। आज आप देखिए कि क्रिश्चियनिटी के जो मुख्तलिफ सेक्ट्स बन चुके हैं ना, हर सेक्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलुफ का शिकार है। कोई कहता है कि जीसस गॉड, यानी वो खुद ही खुदा थे नौजुबिल्ला। एक फिरका दूसरा है वो कहता नहीं वो तो अल्लाह का बेटा है, तीसरे कुछ और कहते हैं, चौथे कुछ और कहते हैं। क़यामत के दिन क्या होगा? मैं जब भी ये रुकू पढ़ती हूँ और ख़ास तौर पर इस आयत पे आती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कसीर तादाद क्रिश्चियंस की है जो अपने ज़ोम में हज़रत ईसा को अल्लाह या अल्लाह का बेटा कहते हैं, उसकी माँ को भी अल्लाह कहते हैं, कोई हज़रत जिब्राइल को भी, होली गोस का नज़रिया है। क़यामत के दिन उनके दिल पर क्या गुजरेगी? आज आपको पता कि नंस यानी कुछ ख़वातीन जो हैबिट करके, यानी वो एक ख़ास ड्रेसअप करके चर्चों में रहती हैं, हम शादी नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि हम जीजस की दुल्हनें बनेंगी। पहले तो आप देखिए कि इस कौम के दिमागों पे क्या है। आज हम नबी सल्लम का तसव्वुर करें तो हमारे जहन में एक बाप आता है, ये अपने नबी को एक शोहर के रूप में देखते हैं। फिर दूसरी बात इसमें आप देखिए कि इस एक आयत में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वो कैफियत और वो रिक्कत आप जाकर बाद में पढ़ के देखिए इसको, तो आपका दिल दुखेगा, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं या इब्ने मरियम, वो ईसा मरियम। आप सोचिए कि एक कोर्ट है, अदालत और कटहरे में ईसा को खड़ा किया गया और इल्ज़ाम क्या है कि जी ये अल्लाह का बेटा है, तो अल्लाह कहते हैं अंता कुलता लिन्नास, ऐ ईसा कि आप अपने फॉलोअर्स को ये कहा था इत्तखिज़ुनी व उम्मी इलाहैनि मिन दुनिल्लाह, कि मुझे और मेरी माँ दोनों को खुदा बनाना। अब हजरत ईसा तो कांपने लगेंगे, क़ाल सुबहानक मा यकूनु लिय नकूला मा लैसा ली बि हक, कहेंगे अल्लाह मैं कैसे वो बात कह सकता हूँ जिसका मुझे हक नहीं। और बिलफर्ज इन कुन तो कुल तो हूँ, मैंने अगर कहा भी है, अगर बिलफर्ज ये मैंने अपनी कौम को कहा होता फ़कद अलिमता हूँ, तो फिर तुझे तेरे इल्म में होता, क्योंकि आलमु माफी नफसी, तू जानता है जो मेरे नफ्स में, भला आलमु माफी नफसी, और मैं नहीं जानता जो तेरे जी में, इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब। तो कुरान पढ़कर इंसान का अकीदा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि अंबिया कराम ने कभी भी अपनी कौमों को ऐसे काम करने का हुक्म नहीं दिया। और फिर आखिरी आयते 119 से 120, सच्चाई का सिला रोज़े क़यामत ही मिलेगा। قال الله هذا يوم, अल्लाह कहेगा ये वो दिन है, ينفع الصادقين صدقهم, जिस दिन सच्चे लोगों को उनका सच फ़ायदा देगा। इस पे इब्ने अब्बास कहते हैं कि यहाँ सिद्क से मुराद तौहीद है, यानी सच्चे लोगों से मुराद मुवाहिदीन है, क्योंकि पीछे कौम के बिगाड़ की बातें थी, तो अल्लाह कहता है जो अल्लाह को एक मानेंगे क़यामत के दिन उनका ये अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह का ये उनको फ़ायदा देगा, और उनके लिए फिर जन्नात होंगी जिसमें नहरें भी बहती होंगी और इसमें हमेशा भी रहेंगे। और यहाँ नोट कीजिए, रदी अल्लाह अन्हुम व रदुवन, अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हो गए, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। एक बंदे मोमिन की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए और वो अल्लाह को नाराज़ ना करे। तो आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरत टॉपिक पे सूरत मायदा पूरी होती है, और इससे आपके मेरे लिए भी अमल की बात है कि अपनी ज़िंदगियाँ सच पिलगाइए। और सच क्या है? सिंपल, क्लीन, क्लियर। अल्लाह को उसका हक दीजिए, बंदों को उसका हक दीजिए, बेजा तकल्लुफात में पढ़कर झूठी सच्ची कहानियाँ सुन सुनाकर ज़िंदगी को ज़ाया ना कीजिए।